आयत नंबर 23 यानी 23 से, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और बेटियाँ भाइयों की और बहनों की बेटियाँ और जिन माओं ने तुमको दूध पिलाया और दूध शरीक बहनें तुम्हारी और माएँ तुम्हारी बीवियों की यानी सासें और वो बेटियाँ जो तुम्हारी गोदों में परवरिश पाती हैं तुम्हारी औरतों से यानी सौतेली बेटियाँ जिन औरतों से तुमने सोहबत की, फिर अगर नहीं तुमने उनसे सोहबत की तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं इनसे निकाह में। और औरतें तुम्हारे बेटों की यानी बहुएं, वो जो तुम्हारी सुलभ से हैं यानी सगे बेटे, और ये कि तुम जमा करो दो बहनों को, हाँ मगर जो कुछ हो चुका बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। और किन से निकाह हराम है, इसके एक लफ्ज़ का इजाफा आयत नंबर 24 से होगा, वल मुख्सनातु मिनन निसा, और खामंद वाली औरतों से। बस यहाँ पे रुक जाएं तो टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहाँ से अब अल्लाह सुबहान ताला ने हमारे सामने एक नई चीज़ रखी, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों के मुख्तलिफ रिश्ते बनाए तो रिश्तों की मुख्तलिफ किस्में बना दी। इस आयत में हमने तफसील के साथ महरम रिश्तेदारों का नाम देखा। महर्रिमात बोलते हैं ऐसी औरतों को, लफ्ज़ हुर्रिमत ही से ये लफ्ज़ हमें मिल सकता है। हुर्रिमत, हराम की गई। क्या हराम किया गया? इनसे निकाह हराम किया गया। इसको आज समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर सूरत नूर में भी जब इसका एक और एंगल देखेंगे तो बात वाज़े हो जाएगी। इस्लाम ने इंसान के करीब रहने वाले रिश्तों में कुछ औरतों को हराम करार दिया कि उनसे निकाह हो, जिसकी यानी लिस्ट हमने इधर देखी, थोड़ी सी तफसील तो हम बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों किया? पहले हिकमत देख लें तो फिर देखेंगे कौन है और क्यों है। इसलिए कि औरत और मर्द में कशिश होती है। एक फितरत की बात है कि बालिग मर्द बालिग औरत की तरफ कशिश महसूस करता है, और ख़ास तौर पे अगर ये पता चल जाए कि यहाँ शादी हो सकती है तो जज्बात में हैजान ज़्यादा बरपा होता है। मसलन फियांसी का तसव्वुर जो है वो आम लड़के से ज़्यादा जज्बात के अंदर हरकत पैदा करने का सबब बनता है। अब किसी बच्चे के बचपन से ले कर जवान होने तक के मरहले जिस घर में गुजरते हैं जहाँ अभी वो शादी के काबिल नहीं हुआ, और फिर जब वो बालिग होगा तो उसके इर्द गिर्द कुछ ख़वातीन तो मौजूद होती हैं जिसमें माँ, बहनें, बाज़ दफ़ा नानी, दादी, फुफ्फो और इसी तरह के कुछ रिश्ते होते हैं। अब अगर इन सारे रिश्तों में निकाह जायज़ होता तो डर पैदा हो जाता इस बात का कि वो ख़राबी जो घर से बाहर निकलने से शुरू होनी थी वो घर में ही शुरू हो जाती। इस्लाम लोगों को पॉजिटिव अप्रोच देता है, कारामत बनाता है, ज़िंदगी को सिर्फ तीन लफ्ज़ों में उलझा के नहीं रखता कि लव, सेक्स एंड रोमांस। आज के कल्चर को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का मरकज़ और मुंतहा और मुबदा और जो आप कह सकें अव्वल और इंतहा सिर्फ यही दो चार लफ्ज़ हैं, कहीं लव है, कहीं रोमांस है और कहीं कुछ और है। हालांकि अपोजिटली इस्लाम ने इंसान को एक बड़ा मकसद दे के दुनिया में भेजा, और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा तो इस दुनिया के लिए इमामत का फरीज़े पे फ़ाइज़ की गई। انہوں نے تو لوگوں کو لے کے چلنا تھا، اب وہ لوگ جو انسانیت کی تعمیر کے لیے اٹھیں، اگر ان کے اپنے ہی جذبات ہر وقت بھڑکے رہیں اور وہ اپنے نفس پہ کوئی قابو ہی نہ پا سکیں، بھوک آئے تو بھوک برداشت نہ کر سکیں، جذبات ابھر پڑے تو پھر جنس کی خواہشات اس کو اللہ کے دین کے کاموں سے روک دیں، تو ایسے لوگ پھر زیادہ کام نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتیں جو مردوں کے قریب رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی کچھ مزید عورتیں شامل ہو جاتی ہیں، تو ان سے نکاح کو حرام کر دیا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کہنے سے پہلے ہی مجھے جھرجھری آ رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ بھائی اور بہن کا نکاح جائز ہوتا تو کیا حال ہوتا ماؤں کا؟ گھروں کے اندر کتنا اضطراب ہوتا، مائیں گھر سے باہر نکل سکتی تھی؟ باپ مطمئن ہو کے مال کمانے کے لیے نکل سکتے تھے؟ اسلام نے ایک احسان کیا انسانیت پہ کہ رشتوں کی پہچان بتا دی، کیونکہ مسلسل جب شہوت والے اور لسٹ والے ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، تو اسے کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت اور مرد کا اختلاط یا مکسنگ یا کو ایجوکیشن یا کو ورکنگ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ جہاں بھی دیکھا گیا کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے کام کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور کپڑے پہننے اور ہنسی بولنا اور گپ شپ، اس پہ زیادہ کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی کھانا سامنے آ جائے اور پھر کہا جائے کہ ہاتھ نہ ہلانا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صبر نہیں ہوتا۔ سامنے آپ کھانے کا کوئی پیکٹ رکھ دیں، کوئی چپس، کوئی کچھ، خود بخود ہاتھ چلنے لگتا ہے، اور کھانا پاس نہ تو آپ کئی گھنٹے صرف سستی کی وجہ سے نہیں اٹھتے کہ اچھا بھی اٹھوں گی تو کھا لوں گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے جسم کو بھوک لگتی ہے پیٹ میں کھانے کی، اسی طرح جذبات کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں جذبات کو چینلائز کرنا سکھاتے ہیں کہ دیکھو ان حرمتوں کو پامال نہ کرنا۔ اللہ نے کچھ عورتوں کو جب تمہارے لیے محرمات کہہ دیا تو اب دوسروں کو دیکھتے دیکھتے تم ان ہر حرمتوں کو پامال نہ کرنا۔ آج ویسٹ میں تو ہوگا ہی، ہمارے بھی ہاں کچھ اس میں کمی نہیں رہی، تعلیم تو عام ہوئی نہیں۔ وہ آیتیں جو ہم پڑھنے والے ہیں، کتنوں نے اس کو تفسیر سے پڑھا ہوگا، اللہ کو پتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج گھروں میں یہ بیماریاں آ گئیں، آج بیٹیاں اپنے باپوں کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں، آج بہنیں اپنے بھائیوں کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ تعلیم عام نہیں کی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا حرمت، حرام کی گئیں۔ کس نے کی ہیں یہ نہیں بتایا، حرمہ کا لفظ ہے، یہ مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، مراد یہ ہے کہ ہو گئیں، اللہ نے کی ظاہر ہے، تم اس پہ بولنے والے نہیں، یعنی نبی نے نہیں کی، کسی امام کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی سختی نہیں ہے، یہ کسی دیندار کے سر پہ نہ لگا دینا کہ وہ بڑا شدید ہے اپنے نظریات میں، یہ اللہ نے کہہ دیا کہ کر دی گئیں، بس تمہیں اس سے ضرورت ہی نہیں سوچنے کی اس سے زیادہ کہ کس نے کی۔ کس پہ ہوئی؟ علیکم، تم پر۔ کم سے مراد یہاں مسلمان مرد ہے، کیونکہ اسلام کا ہر حکم اسلام قبول کرنے کے بعد لگتا ہے، اور مردوں کو خاص طور پہ یہاں کہا گیا۔ کون ہے؟ آپ صرف اردو کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں تو پہلی چیز مائیں تمہاری، امہات۔ امہا کی بھی جمع ہے اور امن کی بھی جمع ہوتی ہے، جڑ کو کہتے ہیں ام، روٹ جو ہوتی ہے۔ تو ماں کو جڑ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پھر آگے سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو مائیں تمہاری، یہاں لفظ امہات جمع میں کیوں آیا؟ کیونکہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ علیکم پیچھے چونکہ جمع کا تھا، سارے مردوں پہ، سارے مردوں کی مائیں بھی مراد ہے۔ دوسری بات ہے، ایک سے زیادہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ سگی ماں، سوتیلی ماں اور رضائی ماں، جس کا آگے تذکرہ ویسے بھی آنے والا ہے، یہ ساری اس میں آتی ہیں۔ یعنی ایک مرد کی اگر چار بیویاں ہیں تو اس کے ایک بیوی میں سے جو بیٹا ہے تو اس پہ وہ چاروں عورتیں حرام ہیں۔ دوسری بات، امہات جمع میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ لفظ ام میں ماں، نانی، پر نانی، دادی، پر دادی اور اوپر کی ساری مائیں آتی ہیں۔ یہ جملہ لکھ لیں، جہاں لفظ ماں آئے گا اس رشتے کے ناطے سے تو اس سے پھر اوپر کی ساری مائیں مراد ہوں گی۔ دوسری بات، دوسرا رشتہ جو منع ہے، بناتکم، بنت کی جمع۔ بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اپنی بیٹی، اور بنات میں پھر ساری باتیں، اپنی بھی بیٹی، बीवी की भी बेटी, जिसका जिक्र आगे से अलग भी आ रहा है, लेकिन आप लिख लें कि बेटी में अपनी बेटी, सोतेली बेटी यानी बीवी की पहले शौहर से बेटी, और बिन्तु जिना, कि अगर जिना कहीं किया किसी मर्द ने, उससे जो बेटी पैदा हो गई, अब वो जिना हुआ वो हराम है, उसका अमल है, वो अलग बात है, लेकिन वो बेटी उसी की बेटी होगी। गो कि ये मसला जो है इख्तलाफी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिना की बच्ची जो है वो मुहर्रमा नहीं रहती, क्यों? इसलिए कि उसको विरासत में हिस्सा नहीं है। पीछे जहां हमने यू सी कुमुल्ला फी औलाद में किया था, उसने भी मेरे जिन से झटक गया था, अगर इस जुमले को वहां को सेट कर सके, आप भी नोट्स में लिख लें कि हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हैं जो विरासत को रोक देती हैं, विरासत नहीं मिलती जिसमें कुफर और ग़ुलामी और दूसरी चीज़ें थी, तो उसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लीजिए, जिना। जिना से जो बच्चा पैदा होता है उसको बाप की विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। अल्लाह के नबी सल्लम की वाज़ह रिवायत है, आपने फरमाया कि जानी के लिए तो कोड़े हैं, कहाँ से हिस्सा मिले, वो तो कोड़े खा रहे, बाप तो वो बना ही नहीं। हाँ, बच्चा उसका जिसके बिस्तर पे पाया जाए, यानी माँ की तरफ उस बच्चे की निस्बत होती है। तो बास कहते हैं कि उधर चूँकि विरासत से उसको महरूम कर दिया गया, तो लिहाजा इधर भी अब जिना से पैदा होने वाली बच्ची से निकाह जो है हराम नहीं है। लेकिन अब देखें तो बच्ची तो फिर बच्ची है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऐसी बच्चियों को दोबारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो बहरहाल बिन्तु जिना का लफ्ज़ इसमें आता है। तीसरी कैटेगरी है वह अखवातुकुम। अखवात उख्तुन की जमा है, बहनों को कहते हैं। कौन सी बहनें? सारी बहनें, सगी बहनें, अल्लाती बहनें और अख्याफी बहनें, यानी माँ की तरफ से मुख्तलिफ थी, बाप की तरफ से मुख्तलिफ थी, और आगे अलग से भी लफ्ज़ आ रहा है कि रज़ात से भी जो बहनें हैं उसको हम वहाँ देखेंगे, सारी की सारी बहनें। लेकिन यहाँ प्लीज़ मोटे मोटे लफ्ज़ों से लिख लें, इससे मुँह बोली बहनें मुराद नहीं हैं। फलां को बहन बनाया हुआ है, फलां को भाई बनाया हुआ है, इस्लाम नहीं बनाता। आप जिसको मर्ज़ी कह दें, जो हदें हैं वो हदें हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो हमारे कल्चर में कि फलां को बेटा बना लिया तो अब सारी पाबंदियों से आज़ाद, फलां को भाई बना लिया, ये बातें नहीं हैं। फिर इसमें वो बहनें भी नहीं जिनको आप बहनें समझते हैं, मसलन चचा की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ, नहीं, इसको तो मैं बहन समझता हूँ या उसको तो मैं भाई समझती हूँ, ऐसा नहीं है। खून के रिश्तों की बातें हो रही हैं। वह अम्मातुकुम, और फूफियाँ तुम्हारी, कौन सी फूफी? सगी, अल्लाती, अख्याफी। वो तीनों लफ्ज़ याद रखें, बाप की तरफ से या दूसरी तरफ से, यानी जहाँ से भी सगे या सोतेले का ताल्लुक है, और आगे लफ्ज़ रज़ात आएगा तो उससे भी इसको देखेंगे। दूध शरीक भी फूफी, यानी जिस औरत का दूध पिलाया पिया बच्चे ने, उसकी नंद उस बच्चे की फूफी होगी, उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके वाज़े कर दूंगी। फिर आगे देखिए खालातुकुम, खाला की जमा, तमा की बहनें, इसमें भी सगी सोतेली सारी की सारी आएंगी। वह बनातुल अखी, भाइयों की बेटियां, जिसको हमारी जुबान में भतीजी कहते हैं, तो कौन से भाई? सगे भाई, अल्लाती या ख्याफी, बाप की शरीक से सगे या माँ के, सारे ही भाइयों की बेटियां जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह एक छोटा सा भी जुमला लिख लें कि जैसे भाई की बेटी हराम है ना निकाह के लिए, भतीजी से नहीं होता, इस तरह फिर आगे उसकी बेटी से भी हराम है। इस्लाम का एक छोटा सा असूल लिख लें, इंशाल्लाह बहुत खुल जाएगी बात, कि जो माँ का महरम है ना वो बेटी का भी महरम होता है, इल्ला माशाल्लाह, कोई एक आध एक्सेप्शनल केस है। मसलन जैसे मियाँ अपना शौहर बीवी का, जिस लड़की की शादी हुई एक मर्द से, वो अब उसका तो शौहर है, लेकिन माँ के लिए वो महरम हो गया, ठीक है? तो अभी टू मच ना लगे तो लिख लें, वरना छोड़ दें इसको। सिर्फ इतनी बात पे आ जाएं कि भाई की बेटियां भी हराम है, तो फिर उसकी बेटियां भी आगे से हराम है। आगे वह बना तो लुख्ती, बहनों की बेटियां, भांजी बोलते हैं, भांजियां, और फिर आगे से उनकी बेटियां भी हराम है निकाह के लिए। वह उम्महातुकुमुल्लाती अर्दानकुम, यहां से अब शुरू होते हैं रज़ात के रिश्ते। आप देखिए कि इस पूरी आयत में सात नसब के रिश्ते हैं जिनको हम ऊपर गिन चुके, बाद में लिख लेंगे तो आपको काउंटिंग में भी आ जाएंगे। नसब से जो हैं वो माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और भांजियाँ हैं। अब इसके बाद सात रिश्ते रज़ात के रिश्ते हैं। रज़ात किसको कहते हैं? अर्दानकुम का लफ्ज़ आ गया रौद वादाइन, सूरत बकरा में हम पढ़ चुके तलाक के वाक्यात में, दूध पिलाने को रज़ात कहते हैं, नर्सिंग मदर से होती हैं। तो किसी बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया है 2 साल की मुद्दत के दरमियान में, مدت رضاعت 2 سال ہے. سورت بقرہ میں آتا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, حولین کاملین, 2 پورے کے پورے سال. ان 2 سالوں کے اندر اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے, کتنا دودھ پی لے جس سے بچے کا پیٹ بھر جائے. 5 گھونٹ کے لفظ آتے ہیں, اس پہ بھی ڈیٹیل موجود ہے, لیکن ابھی صرف ہلکا ہلکا چکھ لیجئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوالوں اور کچھ ڈسکشن کی صورت میں باتیں ہوئیں تو وہ کر لیں گے. بچہ 2 سال کی مدت کے درمیان میں پیے, اتنا پی لے کہ انتڑیاں بھر جائیں, یعنی ما فتق کا لفظ آتا ہے کہ پیٹ بھر جائے, انتڑیاں پھٹیں, یعنی یہ نہیں کہ چسکا لگایا اور چھوڑ دیا. بچہ مسلسل 5 گھونٹ پی لے یا 1 یا 2 بار میں پلا دیا جائے, ڈائریکٹ ماں کے سینے سے پلایا جائے یا اس دودھ کو نکال کے فیڈر یا کسی اور طریقے سے پلا دیا جائے, ان ساری صورتوں میں بچے کی اس ماں کے ساتھ رضاعت قائم ہو جاتی ہے. اور عربوں میں یہ عام کلچر تھا, بچوں کو کھلے جگہوں میں بھیجتی تھیں. دیہاتی خواتین عموماً مضبوط جسم کی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر بچوں کو اچھا پالتی تھیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں حلیمہ سعدیہ موجود ہیں, اور اس ناطے سے پھر وہ عورت جس نے دودھ پلایا نا وہ ماں بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی حرام ہے. اور وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اب ساری بہنیں اس دودھ پلانے کی وجہ سے, مثلا ایک بچہ ہے زید, اس نے ایک عورت فاطمہ کا دودھ پیا, اس فاطمہ عورت کے 4 اور بچے بھی تھے جس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے, تو یہ بچہ زید اس فاطمہ عورت کا دودھ شریک بیٹا ہوا, اور اس کے جو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں وہ اس زید کی بہنیں اور بھائی ہو گئے. اور اس میں بالکل فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک صحیح بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا یحرم من الرضاعتی ما یحرم من الولادتی, حرام ہو جاتا ہے رضاعت کی وجہ سے وہ رشتہ جو ولادت کی وجہ سے حرام ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ان اللہ حرم من الرضاعتی ما حرم من النسب, کہ اللہ نے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کر دی جو نسب سے حرام ہے. تو لہٰذا یہ بالکل سگی ماں والا حساب ہو جاتا ہے. اب اس عورت کے جتنے بچے ہیں نا, اس زید کے وہ بھائی بہن ہوں گے, چاہے اس وقت اس بچے نے جس کے ساتھ دودھ پیا وہ, یا اس کے بعد یا پہلے والے. یا پھر ایک چھوٹی سی بات ہے, جس عورت نے دودھ پلایا زید کو, اس وقت اس کا اپنا بھی تو ایک بچہ ہوگا نا, کوئی دودھ پینے والی ایج میں, تبھی تو اس کو دودھ تھا. کچھ بچوں نے پہلے پی لیا تھا, اب اس زید کے ساتھ نہیں پیا, وہ بھی اس کے بھائی بہن ہو گئے. اب 2 سال بعد اس عورت کو اللہ تعالیٰ ایک اور بچہ دے دیتا ہے جس نے زید کے ساتھ نہیں پیا, لیکن آنے والا ہر بچہ اس زید کا بھائی بہن ہوگا. لیکن اب اس زید کا ایک اور بھائی ہے بکر, اس نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا, وہ کسی اور کا پی رہا ہے یا اپنا, تو بکر جو ہے نا وہ اس عورت کے 5 اور 6 سب بچوں کا محرم نہیں ہوگا. بس ایک بچہ جو دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا, وہ اس خاندان میں داخل ہو گیا, لیکن دوسرے بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد نہیں تھی, تو یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کیا کرتی تھیں کہ جب کسی کے بچے پیدا ہوتے تو ان کو لے جاتی, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن تھی ان کا دودھ پلواتی. جب وہ بچہ حضرت اسماء کا دودھ پی لیتا تو حضرت عائشہ اس کی رضائی خالہ بن جاتی تھی. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ چونکہ اب ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں. دوسری بات ہے, ہمارے ہاں یہ محرمات کا کلچر کہاں ہے, سب ویسے ہی کھلے پھر رہے ہیں. لیکن آج بھی الحمدللہ میں اس چیز کو بہت قریب سے جانتی ہوں کہ جن گھروں میں پردے کا اہتمام ہے اور لوگ اس بات میں دل میں خیال رکھتے ہیں کہ بھائی بچوں کو بڑے ہونے کے بعد پھر حجاب کی پابندیاں ہوں گی اور اس طرح, تو پھر ایک عورت دوسرے کے دودھ پلا دیتی ہے. یعنی اگر دودھ نہ دیں, بالکل ہمارے اپنے گھر کی بات ہے کہ الحمدللہ 2 بھابھیاں اور دونوں کہ جتنے بچے ہیں, صرف پہلا بچہ پہلی بھابھی کا وہ تھا ہی پہلے دوسری کے بچہ پیدا ہونے سے, پھر جب دونوں کے بچے بعد میں ہوتے آلموسٹ دونوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے, تو اس کے بچے کو وہ دودھ پلاتی تھی وہ اس کو پلاتی. بعض بڑوں کو تھوڑا شبہ بھی ہوتا ہے, میری والدہ کو بھی کبھی ہوتا تھا کہ پھر ان کے رشتے کہاں ہوں گے, لیکن اللہ کے حکم سے تھے ہی سارے لڑکے تو پھر شبہ ہی نہ ہوا. تو تب ہمیں بھی مطلب یہ بات اچھی تو لگتی تھی, سمجھ آتی تھی. تو میری امی کو ایک بہت اطمینان تھا, کوئی نہیں ایک مومن تو ہے نا وہ بڑا والا, کہ اگر چھوٹے بھائی کو اللہ نے بیٹی دے دی تو یہ جو بڑوں کی سوچ ہوتی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس وقت وہ بچے تھوڑی سی ایج میں آئے ہیں کہ جہاں अब वो बालिग होना शुरू हुए हैं, तो अब बड़ी भाभी जो हैं वो छोटे भाई के बच्चों के लिए बड़े खुशी से कहती हैं कि अब ये बड़े भी हो रहे हैं तो मुझे गम नहीं है क्योंकि ये मेरे भी बच्चे हैं। और फिर इससे देखिए कितने खुलते हैं रास्ते, अब सिर्फ वो भाभी का ही बच्चा नहीं हुआ, भाभी की जो बेटी है तो दूसरे भाई के सारे बेटे उसके महरम हो गए ना। तो जिन घरों में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है फिर वहाँ ये एक बहुत बड़ा लगता है, बल्कि वो बेचारा बड़ा जिसने नहीं पिया हुआ वो शर्मिंदा फिरता है कि मतलब चच्ची के साथ अब उसका एक किस्म का पर्दा हो गया ना। सिर्फ एक मिसाल देने को ये बात समझा रही हूँ, कोई हुज्जत नहीं है आपके लिए, लेकिन वो शौक से ऐसा करती हैं। इससे वैसे भी आपको पता है कि दो माओं की खूबियाँ बच्चे में आ जाती हैं, जैसे दूध का कहते हैं ना असर होता है, तो जो बच्चा एक से ज़्यादा माओं का दूध पी लेता है ना तो उसका तकवा, इसका ईमान, उसका प्यार उसके अंदर आने लगता है। इसीलिए पहले दौर में माएँ जो थी वो अपने बच्चों को ले ले जाके जाती थी, और नेक औरतें और जो मतलब तकवे वाली फकाहत वाली औरतें होती थी उनसे दूध पिलवाती थी। जिस्मानी सेहत का भी इस पर असर आता है, तो बहरहाल जिस औरत ने दूध पिलवा दिया वो भी माँ हो गई। और अल्लाह के नबी खुद अपनी माँ की बड़ी खिदमत किया करते थे, इज्जत करते थे। एक मौके पे जंग का मौका था, कैदी थे, तो एक औरत आई तो आप इतनी इज्जत से उठे, आपने अपनी चादर बिछाई, उनको मिले, लोग बड़े हैरान कि ये कौन है, तो आपने कहा कि ये मेरी माँ थी, ये मेरी माँ थी दूध पिलाया हुआ। और सहाबा इतने हैरत से देख रहे थे कि आप इतना बिछ बिछ जा रहे हैं उसके ऊपर, कि आपकी अपनी माँ तो थी नहीं कि जिनकी आप खिदमत करते। फिर इसी एक मौके तरह एक मौके पर जंगी कैदियों में एक औरत आई, शीमा उनका नाम था, तो जब वो आई तो अल्लाह के नबी ने पहचान लिया वो आपकी दूसरी बहन थी, तो आपने इतनी उनकी इज्जत की। पहले तो कपड़े ही नहीं थे उनके सर पे, कुफर पे थी उस वक्त गालिबन, ज़ाहिर है तभी जंग में आई थी गनीमत में, तो आपने उनको चादर दी, यानी आपने एक नॉन मुस्लिम बहन को भी बगैर मतलब हिजाब के या इस तरह लिबास के गलत लिबास में नहीं देखना पसंद किया। फिर उनकी इज्जत के लिए और उनको खुश करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को भी छोड़ा। तो यानी ये तो कहानियां हैं उन लोगों की जो हकीकत में रिश्तों की पहचान रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी बयान करने के बाद हमें बता दी बात कि वा ख़वातुकुम मिनर रदा, बहने रजात में से जिसमें हम बात कर गए, व उम्महात निसाइकुम। अच्छा यहाँ पे ख़वातुकुम मिनर रजा की बात आ गई ना, तो यहाँ से अब सारे के सारे अल्लाह ने दोबारा नहीं दोहराए, लेकिन जिस तरह नसब से सात रिश्ते हराम है इसी तरह रजात से भी सात रिश्ते जो ऊपर गुजरे हैं ये सारे हराम है। रजाई फुफी, रजाई खाला, रजाई भांजी, भतीजी, ये सब हराम हो जाएंगे। इसके बाद अब अगले हिस्से जो चल रहे हैं ये हैं ससुराली। ससुराल कहते हैं शहर को। तीन लफ्ज़ मुश्किल ना लगे तो बोल देती हूँ, नसब से हुरमत होती है, रजात से हुरमत होती है, और शहर से स्वाद से, स्वाद हा रौ। नसब तो पता ही है ख़ानदान वाले, मुहर्रमाते नसबिया कहते हैं ऐसी औरतों को, फिर मुहर्रमाते रिदाइया बोलते हैं रजात दूध पीने से, और मुहर्रमाते बिल मुसाहरा, मुसाहरत यानी रिश्तेदारी जिसमें कहीं ना कहीं रिश्ता आता है अपना या किसी और का। ये कौन कौन सी हैं? नंबर एक, वह उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ क्या हुई? सास। फिर इसमें कौन सी माएँ? नंबर एक बीवी की अपनी माँ, अख्याफी और अल्लाती यानी सौतेली माएँ, फिर बीवी की भी रजाई माँ। देखिए कहाँ तक रिश्ते जाते हैं, और इन आयतों को तो पढ़ते हुए आजकल दिल में शिद्दत से एहसास आ रहा है कि वाकई ये कुरान अल्लाह का ही कलाम है। कोई इस तरह जोड़ तोड़ नहीं कर सकता था इंसानों में, और जो लोगों ने किए वो खुद ही नाकाम भी हो गए। हाँ, तो बीवी की माँ सास, जिस औरत के साथ मर्द का निकाह हो जाता है ना उसके बाद उसकी माँ जो है वो उसके लिए हराम होती। कब? शर्त है उसकी है कि उस बीवी से सोहबत हो। बाज़ दफ़ा निकाह हो जाता है लेकिन रुख्सती की नौबत नहीं आती और तलाक हो जाती है, या उस लड़की का इंतकाल हो जाता है, तो फिर उस सूरत में वो हराम नहीं होती। लेकिन जहाँ बात हो जाए ताल्लुक़ की फिर उसके बाद वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है। फिर अगली चीज़, व रबा इबुकुम, वो रबीबा, रबाइब जो ना ये रबीबा की जमा है। रबीबा किसको कहते हैं आप में से किसी को पता है? रबीबा जी, दूध पीती बच्ची को रबीबा कहते हैं, ठीक है। रिब से ना, रब्बा यो रब्बी तरबिया, यानी बाज़ दफ़ा औरतें मर्दों के निकाह में जब आती है तो उनकी गोद में छोटी बच्चियां होती हैं, जो बच्ची नए बाप के घर में ही पली, तो रबाइब रबीबा की जमा, रबीबा वो है जिसकी परवरिश की जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो जवान बच्चियां आती हैं ना साथ, बड़ी बच्चियां हो चुकी हैं या माँ के पास रह रही हैं, नानी के पास रह रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी निकाह होते हैं कि जो बच्ची औरतें आती हैं उनके साथ गोद की बच्चियां होती हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो रबाइब, वो गोद की बच्चियां जो अल्लती फ़ी हुजूरिकुम, जो तुम्हारी गोदों में पल रही हैं, यानी सौतेले बाप की मोहब्बत है। इससे इशारा भी मिल रहा है कि सौतेले बाप को भी बच्ची अपनी बेटियों से प्यार करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। तो वो सारी औरतें बच्चियां भी हराम है। कौन सी? हर बच्ची, हर औरत की नहीं, मिन निसाइकुमुल्लाती दखल तुम बिहिन्ना, वो बच्चियां जिनकी माओ से सोहबत हो चुकी। ये लफ्ज़ दखल तुम बिहिन्ना जो है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। दखल का लफ्ज़ तो उर्दू में बहुत बोलते हैं, बल्कि बड़ी मुदाखलत भी करते हैं। दखल अंदाजी माफ़, दाखला मदखल, हाँ मुदाखलत, ये एक ही लफ्ज़ है। लेकिन ये तो असल में एक लफ्ज़ है ना, लेकिन इसका सिला यानी अगला जो लफ्ज़ होता है जिसको प्रेपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, इसके बदलने से मानी बदल जाता है। दखल तुम के बाद यहाँ आप देखेंगे तो बा का लफ्ज़ आ रहा है ना, दखल तुम बी, ठीक है। तो दखल तुम बी का मानी होता है जिस्मानी ताल्लुक कायम करना। इशारा है, किनाया है इसमें शोहर और बीवी के ताल्लुक की तरफ, कि जिस औरत से ताल्लुक कायम हुआ वो बच्चियाँ हराम है। क्या पता चला? कि वो बच्चियाँ जो बीवी, ऐसी बीवी की पहली शादी में से हों जिस बीवी से ताल्लुक कायम नहीं हुआ और वो फौत हो गई या तलाक हो गई उस बीवी को, तो फिर उसकी जो बच्ची थी उससे उस पहले मर्द की निकाह हो सकता है दोबारा। ये वो औरत है जो उसकी बीवी बनी नहीं, यानी शादी तो हुई थी लेकिन ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो ऐसी बच्ची को भी इससे भी फिर निकाह हो सकता है। और इसमें रिवायात भी मौजूद हैं। आप देखिए कि इस्लाम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। पिछली आयत में हमने देखा था कि बाप की बीवी से निकाह ना करो, क्योंकि एक औरत का सतर अगर बाप के सामने खुला तो बेटे के सामने ना खुले। यहाँ भी वही असूल है कि माँ और बेटी का पर्दा जो है वो एक शौहर के सामने अगर खुल जाए तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। फिर उसके हुजूर हजर की जमा, और हुजूर कहते हैं गोद को। निसा बीवी के लिए आया। फिर आगे देखिए, फ़ाइलम तकूनू दखल तुम बिहिन्ना, फिर अगर नहीं सोहबत की तुमने उन औरतों से यानी जिनकी बच्चियां तुम्हारी गोदों में, तो फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पे गुनाह नहीं। किस बात में? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वो सौतेली बच्ची जो औरत के साथ आई थी उससे निकाह करने में। अब हमारे यहाँ तो शादी का मौजू है ही इतना सेंसिटिव कि एज डिफरेंस ही इतनी बड़ी दलील बन जाती है कि बाकी बातों को तो पीछे ही डाल दें। लेकिन उम्र के फ़र्क से, यानी मिसाल है कि अगर मर्द बड़ी उम्र का भी और सौतेली बेटी छोटी उम्र की है, तो शरण तो निकाह हो सकता है ना। तो यहाँ वही बात आ गई। अगला है रिश्ता, व हलाइल अबनाइकुमुल्लज़ीन मिन अस्लाबिकुम। हलाइल जो है ना, ये हलीलतुन की जमा, और हलीला कहते हैं बहू को। क्या कहते हैं? बहू को। हलाइल हलील हलाल से ना, यानी वो औरत जो उस मर्द के बेटे के लिए हलाल थी। और हल्ला यहुल्लू पीछे हम पढ़ चुके, गिरा खोलना, अक़द निकाह की तरफ इशारा है, कि ऐसी औरतें जो तुम्हारे बेटों की हलाल हो चुकी हैं, जो तुम्हारे बेटों की बीवियां बन चुकी हैं, अब ऐसी औरतों से भी निकाह नहीं किया जा सकता। कौन से बेटों की बीवियां? मिन असलाबिकुम, तुम्हारी सुल्ब से। असलाब सुल्ब की जमा, मुरादे के सगे बेटे, तुम्हारे अपने नुतफे से बेटे हैं। इससे फिर सगे बेटे, सौतेले बेटे सब मुराद हैं, लेकिन याद रखिए मुंह बोले बेटे नहीं मुराद। और यहाँ ख़ास तौर पे असलाबिकुम कहकर मुंह बोले बेटे, जिसको मुतबन्ना कहते थे, ले पालिक बेटा कहते हैं आज के दौर में, यह अडॉप्टेड सन कहते हैं, वो मुराद नहीं है। और इसके बारे में सूरत अलहज़ाब में तफसीली अहकाम आएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा बनाया था, लेकिन बाद में फिर उन्हीं की तलाक याफ्ता बीवी जो थी हज़रत ज़ैनब, उनसे नबी सल्लम का निकाह हुआ। और अरब की एक बहुत बड़ी रस्म टूटी थी, वो समझते थे कि मुंह बोले बेटे की बीवी भी बहू के सेंस में आ जाती है। तो फरमाया कि तुम्हारे सुलबी बेटों की जो बीवियां हैं उनसे। और फिर इसमें आप देखिए कि जिस तरह सगे बेटे की बीवी से निकाह हराम है ना, इसी तरह नवासे, पोते और इनसे आगे जितने उनकी बीवियों से भी निकाह हराम होगा। यहाँ तक कह के फिर एक और चीज़ कह दी, वान तज मऊबई नलुख्तयाई उख्तैन, दो बहनों को भी एक घर में जमा ना करो। कैसे जमा ना करो? यानी एक ही वक्त में एक मर्द चार शादियाँ कर सकता है, लेकिन एक ही वक्त में दो बीवियाँ उसकी दो बहनें नहीं हो सकती। आप यहाँ तक जो ऊपर बात है ना, अन तज मऊ से पहले, यहाँ तक लिख लीजिए कि ये हैं मुहर्रमात अबदिया। अबद कहते हैं हमेशा, एवर लास्टिंग। जितने रिश्तों का भी तस्करा हुआ है ना, ये हमेशा के लिए मुहर्रमात है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए मुहर्रम नहीं होते। अब उनका तस्करा इधर है और साथ हदीस में भी आता है। पहली चीज़ उसमें दो बहनों को जमा करना। ये क्या सूरत है? एक मर्द यके व दीगरे तो एक दो बहनों से शादी कर सकता है। एक बहन से शादी हुई, फौत हो गई या तलाक दी, तो दोबारा दूसरी बहन से हो जाए, जायज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल इसमें मौजूद है। लेकिन दो बहनों को इकट्ठा नहीं ला सकता, क्यों? देखिए, एक तो इस्लाम शादी की सूरत में सतर और हिजाब और शर्म के तकाज़ों को देखना चाहता है, दूसरा इंसानी जज्बात की रियायत भी करता है। बहुत बड़े दिल वाली भी औरत होगी ना, तो वो ज़रूर सौकन के बारे में कुछ ना कुछ महसूस करेगी। तो अल्लाह नहीं चाहते कि दो बहनें सौकने बन के पिछला बहन का रिश्ता भी भूल जाएं, इसलिए एक वक्त में नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ इतनी बात कर दी गई, लेकिन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में हमें मिलता है कि जिस तरह दो बहनें एक जगह नहीं जमा हो सकती, इसी तरह खाला और भांजी और फूफी और भतीजी, ये भी एक ही वक्त में किसी मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। आपने फरमाया, ला युजमउ बैनल मरअति व अम्मतिहा व ला बैनल मरअति व खालतिहा। बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत का खुलासा है कि ना जमा करो दो बहनों को, यानी एक औरत और उसकी फूफी को और औरत और उसकी खाला को। यहाँ भी वही बात है। इस नाते से आप देखिए कि बहनोई और फूफा और खालू, और दूसरी तरफ ले लें कि साली, वक्ती महरमात आ जाती हैं, यानी अबदी तो नहीं है, लेकिन इनकी हुरमत कब तक है? जब तक पहली बीवी मौजूद है। खाला फौत हो जाए तो खालू से निकाह हो सकता है, फूफो फौत हो जाए तो फूफा से निकाह हो सकता है, और इसी तरह बहन फौत हो जाए तो उससे निकाह हो सकता है। कुछ लोगों ने इस वजह की वजह से फिर एक टर्म इख्तरा की, और वो क्या थी कि ये जो तीन लोग हैं ये वक्ती महरम हैं, और चूँकि महरम हैं तो बस दफ़ा हम जूँ ही लफ्ज़ महरम सोचते हैं तो उसके साथ ही हम पर्दे को लगाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर्दे की बात नहीं है। याद रखिए कि मुहर्रमात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक पर्दे से नहीं है, और वो मसला वहाँ आएगा जहाँ सूरत नूर में मुज़क्कर के सीगों में होगा। औरत कहाँ कहाँ जा सकती है, बाप भाई चचा, यहाँ मर्दों के लिए उसकी मुहर्रमात का तस्करा है, तो सूरत नूर में फिर ऑपोजिट वे पे होगा। लेकिन यहाँ हल्की सी बात ये कर दूँ कि जब भी कभी कोई भी ऐसा मामला होता है कि जहाँ निकाह हो सकता है, तो वहाँ ज़्यादा ख़तरा होता है एक दूसरे के सामने आने जाने से ख़राबी फैलती है, तो अमूमन फिर ऐसे रिश्तों में जहाँ निकाह नहीं हो सकता वहाँ हिजाब और यानी लिबास की पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो ये जो बात कह दी गई कि भई औरतें खालू और फूफा और बहनोई से फिर सामने हो जाएंगी वट्स एवर, तो आप देखिए कि अगर सिर्फ यही वजह होती ना कि जिनसे निकाह नहीं हो सकता, मसलन इस वक्त बहन मौजूद है तो बहनोई से निकाह नहीं हो सकता, तो लिहाजा बहनोई के सामने आइए, बातें करें, छेड़खानी करें, उसके जूते छुपाएं, उसको पकड़ें, हाथ लगाएं, कोई बात नहीं जी ये तो बहनोई साहब हैं, और साली को आधे घरवाली भी कह दें, और हया के तकाजों को पामाल करें, और जो शादी की बेहुदा रस्में वो इन नातों से कर लें, ये सोच के कि इससे कौन सा मेरा निकाह होना है। तो ज़रा सोचिए, फिर अगर यही वजह सिर्फ हो किसी से पर्दा उतारने की कि उससे कौन सी शादी होनी है, तो हर निकाहशुदा औरत पर्दा उतार दे, क्योंकि जब तक एक औरत अपने शौहर के हरम में है, शौहर की निकाह में है, उसका तो किसी और से पर्दा ही नहीं, तो उतारिए पर्दे, जाए ऐश करें, क्योंकि मेरी तो किसी से होनी नहीं। तो लिहाजा ये बहुत बुरी तावील है जो अमूमन इस रिश्ते के बारे में की जाती है। खैर, ये तो हुक्म आ गया, अब जो पहले हो गया उसका क्या करें? हमेशा जब भी कोई हुक्म हम सुनते हैं या नया हुक्म आता है तो हर बंदा अपना मुहासबा करने लग जाता है, अरे मैंने तो ये किया ही नहीं, अब क्या करें? यही मौका उस वक्त भी बना तो कहा, इल्ला मा कद सलफ, मगर जो हो गया मट्टी डालो, पिछली बातों को छोड़ो, इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। मतलब क्या है कि कल तक नहीं पता था, तुमने ऐसी कोई गलती कर ली, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, आज पता चल गया, अब इसके बाद अगर करोगे तो ये जुर्म बन जाएगा। इसीलिए इस आयत के नाजिल होने के बाद मक्का में और मदीना में बहुत सारी ऐसे वाक़यात मारूफ हुए थे, जिनमें से एक वाक़या हज़रत बरा बिन आज़ब से है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बरदा बिन नय्यार को एक आदमी के कत्ल के लिए भेजा। इसलिए कि इस शख्स ने बाप की बीवी से निकाह कर लिया था। यानी इतना बड़ा जुर्म है कि बीवी हुक्म उतरने के बाद भी अगर वो अपनी सौतेली माँ से निकाह करता है तो आपने फिर उसके कत्ल का हुक्म दिया। इसी तरह इब्ने फिरोज़ दैलमी कहते हैं कि जब मैं इस्लाम लेकर आया, यानी मैं इस्लाम ले आया तो दो बहनें मेरे निकाह में थीं। मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने फरमाया एक को तलाक देकर जुदा कर दो और एक को रख लो। तो इससे क्या पता चलता है कि दो बहनें अगर हों और किसी को हुक्म पता नहीं था, पता चल गया या अब उसने इस्लाम कबूल किया, तो बस उसमें से एक को छोड़ दे और अल्लाह से माफ़ी मांगे अपनी पिछली बात की। इन्ना अल्लाह कान गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। बज़ाहर ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये लिस्ट कंप्लीट हो गई, ऐसी लग रहा है ना, लेकिन लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वल मुहसनात मिनन निसा का लफ्ज़ आगे मौजूद है। वो औरतें जिनसे निकाह हराम है उनकी लिस्ट में एक वो औरत भी है जो अपने शौहर के निकाह में है। हर शादीशुदा औरत, मर्दों को बता दिया गया कि जब कोई औरत किसी मर्द के निकाह में है तो उसके बारे में सोचना, उससे राह और रस्म बढ़ाना, उससे शादी का तसव्वुर लाना, ये दुगना जुर्म हो जाएगा। इसलिए कि आप देखिए कि कितनी खराबी की बात है ना कि एक औरत जो पहले ही किसी मर्द के घर में है, हर मर्द में कमी बेशी होती है, गुजारा कर लेगी, लेकिन जो ही किसी दूसरे ने उसकी तरफ ज़रा मोहब्बत भरी बातें करनी शुरू कर दी और उसको आंखों से इशारे कर दिए और तोहफे दिए, चाहे वो दोस्त की बीवी के नाम पे हो, चाहे रिश्तेदारों में कोई दूर पार का हो, तो आप सोचिए कि उस औरत को अपना शौहर अच्छा लगेगा। यानी बास हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें जुर्म की नौयत बढ़ जाती है। तो वल मुहसनात मिनन निसा को इस आयत के साथ अगर आप पीछे मिला लें तो पता क्या चला कि जिन लोगों की लिस्ट तैयार हुई उसके अंदर उस लिस्ट औरत को टॉप पे रखा जाएगा जो औरत किसी दूसरे के निकाह में होगी। लफ्ज़ मुहसिना को तो हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक में से कुछ चीज़ें जो शायद थोड़ी सी फ़ायदेमंद हो उसको देख लेते हैं। पहली बात इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया ना कि इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो इसका अब ये नहीं मतलब कि अब हुक्म पता भी चल गया फिर वैसे रहते भी रहो जो खराबी थी और साथ ही कहते जाओ कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हमारे अमूमन तौबा का ये तसव्वुर है ना, वो अल्लाह माफ़ करने वाला है, नहीं छोड़ो फिर उस अमल पे शर्मिंदा हो जाओ तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस्लाम लाने पे या मालूम होने पे अगर कोई बंदा उस काम को नहीं छोड़ता तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से मुजरिम है। फिर एक और चीज़ आप देखिए, इससे बहुत ही खूबसूरत तसव्वुर आ रहा था और मैं जब ये आयत पढ़ा रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे घर साफ़ सुथरे हो जाएं, है ना, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल तहारत, ज़हनी तहारत। रिश्तों को अल्लाह ताला ने इस तरीके से बना दिया कि फितरत से पूछेंगे तो इन सारे रिश्तों की तरफ सोचेंगे भी नहीं। और बड़ा ही बदबخت है वो शख्स जो ऐसी औरतों के बारे में या निकाह के लिए या शहवत के साथ सोचे, लेकिन अकल से पूछेंगे तो अकल क्या कहेगी, क्या हरज है, औरत ही तो है ना, फिजिकली उसमें और इसमें क्या हरज है। इसीलिए फिर आपने भी वो मैगजीन देखा होगा कि फ्रंट पेज पे ऐसे लड़के की तस्वीर थी जिसने ना सिर्फ ये कि अपनी बहन से निकाह किया बल्कि एक बच्चे का बाप भी है और कहते हैं कि हम दोनों बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये अकल के फ़ैसले हैं। पीछे एक दफ़ा बात हुई थी ना फितरत और अकल का मुकाबला, तो अकल से नहीं पूछना इन रिश्तों को वरना बहक जाएंगे, इसके ऊपर तो बस खामोशी रखेंगे। और हाँ, अगर किसी ने इन रिश्तों पर गलत नज़र डाली ना तो उसका जुर्म बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पाबंदी है, इसी तरह अगर इस तरफ कोई बात हुई तो वो चीज़ दुरुस्त भी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले मुहर्रमात से ज़िना किया जाएगा। और आज आप देखिए कि जब आप औरतों के लिबास और उनके मामलात को देखते हैं तो वाकई ऐसी लगता है। एक मौके पे मुझे इत्तफाक हुआ किसी ऐसी जगह पब्लिकली जाने का, हम तो नेचर देखने गए थे लेकिन वहाँ नेचर को देखने से ज़्यादा अपने आप को दिखाने वाले और पानी के करीब जाके तो लोग वैसे ही अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस करते हैं, तो आंखें नहीं उठ रही थी। एक किसी सी वर्ल्ड में मैं एक दफ़ा गई और वहाँ से जो बुरा दिल लेकर आई थी वो यही सोच के लाई थी कि अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी कि करीब है, यही जो बात अभी रिवायत रखी वो सच थी। यानी जवान भारी जिस्म की माँ भी उसी हुलिया में थी, 12-14 साल की जंग लड़की भी उसी में थी और जवान बच्चा भी उसी हुलिया में था कि जिसको इंसान आंखें उठा के देख भी नहीं सकता। और फिर जब ट्रैक्शन होती है तो फिर आप सोचिए कि कहाँ पे बात जाएगी। इस्लाम इतना प्यारा दीन है, हम सोचते हैं ना कि इस्लाम के साथ हमारी आखिरत अच्छी होगी। आप इस्लामी कवानीन को ज़िंदगी में लाएं तो आपकी दुनिया अच्छी होगी। इस्लाम ने शादी करने को भी इबादत करवा दिया, ये दुनियादारी नहीं है, ये खालिस इबादत है। अल्लाह के नबी ने निकाह को अपनी सुन्नत कहा। क्रिश्चियनिटी में दो इंतहाएं हमें दिखती हैं, एक ये कि शादी ना करो और दूसरी ये कि जिससे चाहो जिनसी ताल्लुक रख लो। इस्लाम इन दो के बीच में रखता है कि नहीं, कुछ जगह कर सकते और कुछ जगह नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। अब ये लिस्ट जो हमारी बनी है ना, 7 नसब की हैं ख़वातीन, 7 इसमें रज़ात की हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ रिश्ते जो हैं वो सहर से हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका तذکرہ इसमें नहीं है, ताकि मैं लिखवाना चाहूँगी ताकि आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए। बाप की बीवी से निकाह हराम है, सौतेली माँ का लफ्ज़ इसमें नहीं, गो के पीछे इशारा हुआ। इसी तरह इद्दत वाली औरत जिसकी इद्दत अभी चल रही है, यानी बाइन या रजई तलाक, यानी दो तलाकों की जो इद्दत अभी औरत गुजार रही है, वो भी हर मर्द पे हराम है। इसी तरह 4 बीवियों के होते हुए 5वीं बीवी हर मर्द पे हराम है। फिर अगला नंबर डाल लीजिए लियान शुदा बीवी, एक टर्म होती है जो हम सीख पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत नूर में। खुलासा यही है कि अगर मर्द औरत दोनों एक दूसरे को किसी भी ऐसी गंदी हालत में देख लें जिसको जिना कह सकते हैं और जिसके यकीन है जिना होने में, लेकिन दलाइल नहीं है, सबूत नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके एक दूसरे के ऊपर ये बात करते हैं कि मैंने इसको इस बुराई में देखा, और उसके बाद फिर वो जुदा कर दिए जाते हैं। लियान बोलते हैं लानत से, यानी एक दूसरे पर लानदान करना। तो जिससे लियान हो जाता है वो औरत फिर क़्यामत तक उस मर्द के ऊपर हराम हो जाती है। फिर इसी तरह तलाक़ बाइना के बाद जब तक दोबारा शादी करके तलाक या बेवा ना हो, वही जिसको हमारे यहाँ हलाला बोलते हैं, यानी 3 तलाक़ें एक मर्द ने दे दी, अब वो औरत उस पर हराम है, इल्ला ये कि कुदरतन ही उसकी कहीं शादी हो के टूटे फिर वो इसकी तरफ आए। इसी तरह बस ये भी आता है कि खुला के बाद भी दोबारा निकाह नहीं हो सकता, हाँ लेकिन उसकी कुछ शरायत हैं, इसको आप मशरूत कर सकते हैं। और आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी ने ला इल्मी में सौतेली माँ से निकाह किया था, तो उस पर भी ये आयात नाजिल हुई थी। और आज अगर कोई ऐसा करे और इस्लामी हुकूमत कायम हो तो क्या होगा, तो ऐसे जोड़े को कैद किया जाएगा, यानी ये आप कह सकते हैं कि फौजदारी अमल बन चुका, और पुलिस इस आके ऐसे जोड़े के अंदर जुदाई कराएगी और फिर उनको मुनासिब सज़ा दी जाएगी। और मुसद अहमद की एक रिवायत से जो इशारा मिलता है वो क्या है कि ऐसे लोगों को मौत की और जब्त जायदाद की सज़ा दी जाएगी, यानी उनकी प्रॉपर्टी को कुर कर लिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुहर्रमात में से किसी के साथ जिना करे इसे कत्ल कर दो। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि जिसने किसी औरत के अज़ाए सिन्फी यानी प्राइवेट पार्ट्स पर नज़र डाली तो उसकी माँ और बेटी अब उस पर हराम है, यानी ना उस और बीवी की माँ से निकाह हो सकता है और ना बीवी की बेटी से निकाह हो सकता है। यहाँ कोई सवाल तो नहीं आपके जहनों में? जी प्लीज़। जिनका सवाल है कि एक मर्द किसी औरत से जिना करता है तो क्या फिर उससे शादी कर सकता है? देखिए आज के बिगड़े हुए मुआशरे में जहाँ कोई कानून ही नहीं, कोई सज़ाएँ नहीं, तो बेस्ट तरीका ये है, अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान लड़के लड़की ने कोई गलत ताल्लुक़ कायम कर लिया, शाम से पहले उनका निकाह कर दें, और अगर उस ताल्लुक़ से कोई गलत औलाद हो गई है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसका पर्दा ढक ले। और कसरत से ऐसा हो रहा है, आपने तो वो बात कह दी कि जिससे मेरे दिल में बड़ा दर्द है। आपको पता है कि वैस में होने वाली कुछ शादियां वैसी हैं कि शादी के चंद माह के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, और फिर माएँ सासें छुपाती फिरती हैं वक्त से पहले हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी फर्स्ट हैंड एक बहुत मेरी करीबी साथी हैं, यानी ऐसे दीनी ताल्लुक है, तो वो ख़ुद किसी शादी में इन्वाइटेड थी और कहती हैं कि जब लड़की आई तो वो कई महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी, और लड़का जो साथ आया वो ब्लैक था, और क्या मामले थे। मत इस कीचड़ को मत खोलें। जी और कोई बात प्लीज़। जी इन्होंने सवाल किया है कि ये जो वक्ती महरम है जैसे बहनोई और दूसरे लोग हैं, तो क्या फिर ये हज के अंदर आपके महरम बन जा सकते हैं? हाँ, तो इसका टॉपिक हज की जब किताब पढ़ेंगे, हज और उम्रे के मसाइल उसमें कीजिएगा, ठीक है? तिलावत सुन लेते हैं।
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً.